श्री कृष्ण नींद में से उठते तो थोड़े शांत होकर बैठते। ये दिखने वाला शरीर मैं नहीं, मैं सत हूं, चित्त हूं, आनंद स्वरूप, मैं अमर चैतन्य हूं। ओ ओ ओ माया के उतार चढ़ाव मुझ आत्मा पर कोई असर नहीं करते। मैं अमर शाश्वत आत्मा व्यापक ब्रह्म, कर्षित आकर्षित आनंदित करने वाला मैं आत्मा हूं। ओम आनंद, ओम ओम। अपने आनंद स्वभाव का, कर्षित आकर्षित स्वभाव का चिंतन करते श्री कृष्ण, और उसी चिंतन चिंतन में विश्रांति पाते, जिससे श्री कृष्ण का बल और आनंद बांटने का सामर्थ्य भर जाता। फिर श्री कृष्ण विचारते कि आज इतना इतना गौदान करना है, इतने इतने मंगल कार्य करने हैं। सुबह ही उनका निर्णय कर लेते। उसके बाद श्री कृष्ण स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने नित्य साधन सुबह की संध्या आदि में बैठते। श्री राम भी संध्या करते, प्राणायाम करते थे। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि प्राणायाम करके जिनका अंतःकरण पवित्र हुआ वे ही परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को धारण कर सकते, पा सकते। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। इंद्रियाना मनोनाथ मननाथस्तु मारुता। जहां प्राण का ठीक से विचरण नहीं होता, वे अंग धीरे धीरे बीमारी के घर बन जाते। ये कोलेस्ट्रॉल हो गया क्योंकि प्राण शक्ति का प्रवेश ठीक से नहीं हो रहा, इसलिए रक्त नहीं। फलाना पैर सड़ गया, न सड़ गए कि प्राण कमजोर है। अगर त्रिकाल संध्या करते तो ये इतने रोग हो ही नहीं सकते। संध्या में प्राणायाम है और प्राणायाम से प्राण शक्ति सबल होती। प्राण शक्ति सबल तो मन शक्ति सबल, आरोग्य शक्ति सबल, रोग प्रतिकारक शक्ति सबल, विचार शक्ति सबल, अनुमान शक्ति सबल। जितना प्राण सबल और सूक्ष्म, उतना आपकी वाणी और आपके संकल्प और सोच विचार का सामर्थ्य अधिक। श्री कृष्ण, श्री राम और योगी लोग इस प्रकार की सूक्ष्म रहस्यमय बातें जानते अपने गुरुओं से, और फिर उसका महत्व समझकर योग साधक अभ्यास करते। खाली दिन भर चिल्लाना कृष्ण गोविंद, ये तो भगतों का काम है। हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, ये तो दिन भर चिल्लाते रहते और उनके जीवन में कोई ज्यादा बरकत नहीं दिखती। हाँ, जाप कीर्तन धर्मो रक्षति कीर्तनात्, कीर्तन में भगवत नाम है तो भगवान का बल भक्त को सहायता देता है। लेकिन भक्त सहायता हजम करने की भी योग्यता और शास्त्र की रीति से अथवा अंतर्यामी परमात्मा या इष्ट की प्रीति से भक्त को जो प्रेरणा मिले उस सत्कर्म में अडिग रहे। अडिग रहने के लिए भी मनोबल चाहिए, विचार बल चाहिए। भक्त अगर सावधान थोड़े नहीं रहे तो भगतड़े बन जाने का डर है। योगी सावधान नहीं रहा तो रोगी होने का भय, तत्वज्ञानी सावधान नहीं रहे तो नास्तिक और विलासी होने का भय। ज्ञान मार्ग से जाने वालों के लिए सब ब्रह्म है, जो भी खाओ सब कुछ, ऐसा करो ऐसा करो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार का भय है। ब्रह्म ज्ञान सुन लिया और ब्रह्म सुख तो पाया नहीं, विषय विकारों में डूब गए, ये खतरा है ज्ञान मार्गियों को, योग मार्गियों को। योग से सिद्धियां आती और ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए और मनमाना करने लग गए तो कभी कभी विकृत दिशा मिल गए और रोग हो गए। योग से रोग होते तो मिटना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, जिनके ऊपर गुरु की कृपा बरसती, मंत्र दीक्षा मिलती, उनकी प्राण शक्ति जगती है, जिसे शास्त्रों ने कुंडलनी शक्ति कही। कुंडलनी जागृत के पहले प्राण शक्ति जागृत होती, फिर वो साधक मंत्र दीक्षा लेने के पहले भी कभी कभी समर्थ गुरु के वातावरण में ही कुंडलनी शक्ति को जगाने वाली प्राण शक्ति जग जाती। कभी मंत्र दीक्षा के समय ही जग जाती तो कभी थोड़े समय के बाद, जो मंत्र लिया है। और जिनकी कुंडलनी शक्ति प्राण शक्ति जागृत है, आत्मविश्रांति के धनी है, ऐसे गुरु का दिया हुआ मंत्र साधक की सुषुप्त शक्तियों को जगाने में बड़ा सक्षम होता है। जैसे केबल कितनी भी मोटी हो, तुम्हारे घर में लाइट पंखे आदि में जान नहीं आएगी। अगर वो केबल पतला भी हो, पावर हाउस से जुड़ा है, तो फिर तुम्हारे घर के साधनों में जान आ जाएगी। ऐसे पावर हाउसों का पावर हाउस जो अपने सत्य चित्त आनंद ब्रह्म स्वभाव से जगा जुड़ा है, ऐसे गुरु के द्वारा जब गुरु मंत्र मिलता है और गुरु मंत्र के साथ प्राणायाम आदि की विधि मिलती है और साधक करता रहे, तो चंद दिनों में उसको आश्चर्यकारक लाभ महसूस होने लगते। जो नहीं बोलते थे, बात नहीं करते, या जो बॉस धमकाते थे, वे अब प्रेम से बात करने लगे। जहां विफलताएं मुंह फाड़े बैठी थी, वहां अब मुंह बंद के और सफलताओं के श्री गणेश हो रहे। जहां रोग ही रोग थे, वहां आरोग्य के कण बढ़ रहे। इस प्रकार के लाभ शुरुआती लाभ, लेकिन ये लाभ आत्मज्ञानी गुरुओं के नजर में कोई बड़ी बात नहीं। और भी परम लाभ, और भी बड़े ऊंचे लाभ है। साधक नियम करता जाए, गुरु के संकेतों को समझता जाए, तो साधक एक ऐसी ऊंचाई को छूता है कि जहां कृष्ण है वहां तुम, जहां राम है वहां तुम, जहां शिव है वहां तुम हो, ऐसा तुमको अनुभव हो जाएगा। इतनी ऊंचाइयां हैं। उसके पहले कई अनुभूतियां होती है। कोई नीला प्रकाश दिखे, सफेद प्रकाश दिखे, कभी प्राण शक्ति कुंडलनी शक्ति चढ़ रही, कभी हास्य होने लग जाए, कभी रुदन होने लग जाए, कभी क्रियाएं होने लग जाए, तो उसको रोकना नहीं है। प्राण शक्ति को अंदर प्रवेश करके अपनी शुद्धिकरण करने में सहयोग देना चाहिए। कई माया अथवा भावुक भक्त एकदम चीखते रोते, नए लोग टिकटिकी लगा कर चकित होकर देखते, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। या तो उनकी विरह भक्ति का भाव दबा था, वो उभरा है, अथवा तो वो दबे हुए मानस के थे, घूंट पी पी कर स्त्रिया होने की दिशा में अचेतन मन जा रहा था, उसके ऊपर से दबाव हटा, प्राण शक्ति बढ़ी, जीवनी शक्ति बढ़ी, तो वो रोग प्रतिकारक शक्ति और भाव ने उसकी जो हिस्ट्रिया होने की संभावना है दूर करने के लिए अभी वो रो रहा है, अपने व्यथा को प्रकट करके खाली हो रहा है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को हिस्ट्रिया की तकलीफ ज्यादा होती। बच्ची की माँ अगर कड़क है, ये नहीं कर वो नहीं कर, अथवा सासू कड़क है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, पति कड़क है, तो वो पीती जाती पीती जाती, जो पीते हुए दुख के घूंट हैं वही हिस्टीरिया का रूप लेते हैं, ऐसा भी कईयों का मानना है। और भी कारण हो सकते हैं, मैंने सुना है हिस्टीरिया के कारण दुखों के घूंट खूब खूब जिसने पिए हैं दबाए हैं उनको होती है। लेकिन जो मंत्र दीक्षा लेते हैं उनकी हिस्टेरिया होने की संभावना बाद में नहीं रहती, अगर है तो भी मिट जाती। लेकिन मंत्र दीक्षा हमारे पास से केवल हिस्टेरिया मिटाने के लिए नहीं है, भूत छुपाए और मंत्र दीक्षा ली तो वो भूत को परेशानी होगी, भागने के लिए रास्ता खोजेगा, अब निकलता हूँ जाता। मंत्र दीक्षा ली तो अशुद्ध कोई हवा प्रवेश नहीं पाएगी, अशुद्ध विचार आ भी गए तो शुद्ध विचार अशुद्ध विचार के बीच संघर्ष होगा। शुद्ध विचार दबे थे तो अशुद्ध विचार आपको घसीट के ले जाते, अशुद्ध कर्मों में ले जाते। पुरानी आदत है और उनका माहौल है, अनिष्ट बलवान है और आपका इष्ट अभिनन्ना है, तो हो सकता है कि आप न चाहते हुए भी पिछड़ जाएं। फिर भी हिम्मत करें, अपना नियम जप और प्रार्थना चालू रखें तो इष्ट आपका मजबूत हो जाएगा, तो अनिष्ट को आप दबोच के परम इष्ट की यात्रा में, नई यात्रा में सफल हो जाएंगे। तो बापूजी नई और पुरानी यात्रा क्या? पुरानी यात्रा ये है कि आंखों के द्वारा सुखी होने में कई करोड़ों जन्म बर्बाद हो गए, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, कान के द्वारा, संभोग आदि स्पर्श के द्वारा, इन पांच इंद्रियों के द्वारा सुख खोजते खोजते और सुख की भ्रांति देखते देखते आखिर जीव दुखी होते गए, और यही वही ढपली और राग, जन्मो और मरो, मरो और जन्मो, सुखाया दुखाया, दुखाया सुखाया, सफलता ही विफलता ही, अंत में मौत आई। तो आपके हाथ में क्या आ रहा, आपके पास क्या आ रहा, पुण्य और पाप। पुण्य रहा तो सुख भोगा जाकर स्वर्ग में फिर गिरे किसी के गर्भ में लटके, पाप रहा तो नरक भोगा और फिर गिरे नीच योनियों में जाके पड़े चार पैर वाले जीव जंतु जानवरों के, माँ चार पैर वाली मिली तो आप पाड़े बन गए, पाड़ी बनकर भैंस बनोगे, भैंसा बनो। तो इस प्रकार के बुद्ध बताते कि मैं एक जन्म में भैंसा था। जब बुद्धत्व को पाने वाले पुरुष भी कभी भैंसे की यात्रा किए हुए हैं तो आप और हमने कितनी यात्रा नहीं की होगी, सोचो। बुद्ध कहते थे, हे भिक्षु को ये जो सामने सागर लहरा रहा है, सरोवर, उसको भी तुम मात कर दोगे अगर तुम सभी जन्मों के आंसुओं को इकट्ठा करो तो तुमने इस सागर से भी ज्यादा आंसू बहाए। और ये जो पहाड़ दिख रहा है, जब जन्मे और मरे हुए सभी जन्मों की हड्डियां इकट्ठी कर लो तो इस पहाड़ को भी तुम्हारी हड्डियां मात कर देगी, तुम्हारी हड्डियां इस पहाड़ से भी ज्यादा ढेर कर देगी, इतने तुमने जन्म लिए। अब सावधान हो जाओ, यात्रा करो। जन्मे और मरे तो प्रकृति में घसीटे जाते, अब अपने ऊपर उठने की यात्रा करो। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी शिला का नीचे गिरना आसान है, ऊपर चढ़ने में मेहनत है। पानी का नीचे बहना आसान है, ऊपर चढ़ाने में व्यवस्था चाहिए। कोई टिल्लू से चढ़ाए, कोई सबमर्सिबल से चढ़ाए, कोई बाल्टी भर के ले जाए, लेकिन ऊपर भी पानी आता है आवश्यकता। ऐसे जीवनी शक्ति नीचे को तो जाती है, अपने खाया काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मात्सर्य में जाती, जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन वही जीवन शक्ति गुरु की कृपा होती है, कुंडलनी शक्ति जागृत होती है, तो प्राण शक्ति मना शक्ति ऊपर के केंद्रों में आने लगती। पहले तो वही शुद्धि होती है, मूलाधार केंद्र में अगर जीवनी शक्ति गुरु की ने संचार किया तो बैठे बैठे आपका नाभि का हिस्सा यूं हिलेगा, कभी कभी आप ऊपर कूदेंगे। यहाँ तक कि अभ्यास किया तो मेढक की नाई आपका आसन उठने लगेगा, जंप मारने लगे। लालजी महाराज की सेविका थी कृष्णाबेन, अभी भी हयात है, तो उनके ऊपर भगवान की जो भी कृपा हुई बड़े नियम से जब तक, तो लालजी महाराज मेरे से पूछने लगे क्या उठाए छे, हंसू हंसे मैं क्या ये इनकी कुंडलनी शक्ति जागृत हुई। महाराज ने वो यात्रा नहीं की। ऐसे घाट वाले बाबा की एक शिष्या थी। घाट वाले बाबा ने मेरे को कहा कि इसके ऊपर जरा कर दो। तो यार तो प्रसाद है संतों का। तो बैठी और दृष्टि पड़ी और मंत्र लिया और उसी समय उसको होने लगा। तो घाट वाले बड़े प्रभावित हुए कि बाजी बिना स्पर्श किए बिना कुछ किए ही तुम तो पढ़ा, क्या चमत्कार बाजी, ये क्या है? तो मैं क्या महाराज, ये प्राण शक्ति जगाने की योग मार्ग की प्रक्रिया है। महाराज का तत्व मार्ग था, लालजी महाराज का भक्ति मार्ग है। अपने सब मिश्रित लेके चलते हैं। कोई योग का अधिकारी है तो योग मार्ग से चल भैया, भक्ति के अधिकारी तो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये भी करते हैं, हरि ओम भी करते, माला भी जप करते। ज्ञान मार्ग का अधिकारी तो ज्ञान की भी चर्चा होती है। तो अपनी त्रिपंखी यात्रा है। तो जो बुद्धिमान है और वैराग्यवान है उसको ज्ञान मार्ग में गति होगी। जो कर्मठ है उसको कर्म योग, जो भावना वाला है उसको भक्ति योग, योग है वो भी। तो कर्म उपासना और ज्ञान, अर्थात कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग, तीनों योग अपने आप में स्वतंत्र है आखिर तक पहुंचाने में। लेकिन भक्ति योग है पिपली का मार्ग, कीड़ी के मार्ग, धीरे चाल धीमी चाल। योग मार्ग है बंदर की चाल, कूदे एक पेड़ से दूसरे पेड़। और ज्ञान मार्ग है पक्षी की चाल, विहंग मार्ग। तो बंदर को 10 पेड़ कूदने में जितना समय लगेगा, पक्षी को 50 पेड़ कूदने में उतनी मेहनत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो पंख कहीं कहीं होते, तो पंख फूटे और पंख सबल रहे इसमें योग मार्ग का उपयोग किया जाता है। भगवान की प्रार्थना की तो भक्ति मार्ग का उपयोग किया जाता है। भगवान की कृपा और अपना पुरुषार्थ, भगवत भाव और अपनी सेवा, मैं ईश्वर के लिए तड़पा और मैंने ठान लिया कि एक बार तू मिल जा फिर मैं तुझे ऐसा सस्ता बना दूंगा, ऐसा बजारू बना दूंगा कि कोई भी आए और तेरा प्रसाद ले जाए। और उसने ऐसी कृपा कर दी है कि ऐसे ऐसे उपाय और ऐसी ऐसी युक्तियां आती हैं कि घाट वाले बाबा जैसे संत भी, अरे बाबा ये क्यों। तो अलग अलग मेरे गुरुदेव का अपना सामर्थ्य था, योगी महाराज का अपना सामर्थ्य, भक्त संतों का अपना सामर्थ्य। ऐसे से उच्च कोटि के संत मेरे मित्र रहे। तो मेरे पास सबका खजाना है, सबका माल मेरे पास है, इसलिए सभी को सबका माल कोई ना कोई पसंद पड़ ही जाता है। नारायण 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 नारायण। तो एक देशी साधना, भाई चलो तप करो, अपनी वासनाएं मिटाओ, ठीक है, नंगे पैर यात्रा करो। आचार्य विनोबा भावे उस रास्ते चल पड़े थे, बाद में बहुत पछताए कि मैंने तप की महिमा जानकर यात्रा की, नंगे पैर यात्रा की, लेकिन जब आंखों पर तेजा गर्मी चढ़ गई तब मुझे सूझबूझ आई कि वो पहले नंगे पैर चलते तो हरियाली होती थी, डामर की सड़कें ही नहीं होती थी और धुआं का जहर निकालने वाली बसें ट्रकें ट्रैक्टर और रिक्शाएं नहीं होती थी। उस जमाने की पैदल यात्रा आज से 2500 वर्ष 2000 वर्ष 500 हजार वर्ष का वातावरण और अभी के वातावरण में फर्क। तो देश काल और पात्रता के अनुसार करना पड़ेगा। पहले जो शरीर में क्षमता थी सक्षमता थी वो अभी नहीं है। पहले जैसे हमारे यात्रा के भोजन बनाने के साधन थे, अब हम वो लेके बैठे तो जमाने के साथ कंधा नहीं मिला सकते। पहले हमारे परदादे बैलगाड़ी में जाते होंगे, यहाँ बहुत शाहूकार होंगे तो घोड़े पर जाते होंगे, घोड़ा गाड़ी में जाते होंगे। अगर हम अमेरिका अथवा लंदन या दिल्ली में घोड़ा गाड़ी में जाएं तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। हमें तो अभी हवाई जहाज़ का और ट्रेनों का उपयोग करना ही चाहिए, करना ही पड़ता है। ऐसे ही पहले हमारे दादी माँ और हमारी माता भोजन बनाती थी तो चूल्हे पर बनाती और उसको एक घर की रसोई बनाने में 2-3 घंटे लग जाते, फूं फूं करते। रांधन छट में भी न जाने कितनी बार सुबह आती हमारी माँ फूं फूं करके। अभी तुम लोग भी रांधन छट के दिन बबुल की लकड़ियां ले आओ और गोबर के कंडे ले आओ तो कैसे गुजारा होगा। अभी तो आपको लाइटर मारा, गैस हुआ, बनाए, करना पड़ेगा। पहले संदेशा भेजना था, कबूतर पालो, उसके गले में चिट्ठी डालो और बाद में वो खबर लाए। अभी तो हाय बाय हेलो करके बात पूरी हो गई। ऐसे ही अभी के जमाने के अनुसार साधना भी ऐसी करो कि अभी अभी टेलीफोन जोड़ो और अपने आत्मा परमात्मा का आनंद, मार्गदर्शन और सामर्थ्य पालो, बस ऐसा है। इसलिए मेरी ग्राहकी बहुत ज़्यादा है। और साधनों में जैसे फास्ट मार्ग है, तेज मार्ग है, जल्दी का है, ऐसे हम भी जल्दी वाले मार्ग को खोज लिए, पसंद किए, चले और चलाने में हमारी रुचि है। ऐसे अच्छे उच्च कोटि के संतों के चरणों में हम गए थे। अब एक एक संत को खोजते खोजते तो हमारी 10 जन्म पूरे हो जाएंगे। 60 लाख तो उस समय संत लोग थे, अभी कितने होंगे मेरी गिनती नहीं। तो 5,000 एक साथ में संत मिले, ऐसे हम अयोध्या जी में गए और 5,000 को एक एक दिन मिले तो 5,000 दिन कहाँ से लाऊंगा। एक दिन में 10 को 25 को मिले तो अभी भी बहुत सारे महीने चाहिए। तो मैंने जांच करके 4 ऊंचे संतों का यश परिचय सुना। उन 4 में भी जो विशेष है, घास फूस की कुटिया में रहते, 100 साल के करीब है और अच्छे मिलनसार और भक्ति में रंगे हैं, उनके पास मैंने हत्था जोड़ी की और उनसे ईश्वर प्राप्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए, महाराज कृपा हो जाए मार्ग। तो उन्होंने बताया कि 12 साल मूलाधार केंद्र पर जप करो, 12 साल स्वाधिष्ठान पर, 12 साल हृदय केंद्र पर, 12 साल यहाँ। मैंने गिनती लगाई, 48 साल हो जाए उसके बाद पिया मिलेगा, मैं मर जाऊँगा। नहीं, महाराज को मैंने मन ही मन प्रणाम कर दिया विदाई का। फिर वहां में है रुका नहीं, आखिर ऐसी जगह पर पहुंचा कि भाई आ जा और ले जा। उस महापुरुष का इंतजार करना पड़ा कि आ जाते अभी आते, आ जाते अभी आते 40 दिन तक। उसके बाद मिले तो 30 दिन उनके चरणों में रहे, फिर घर भेज दिया। लेकिन अब एक बार महापुरुष का दर्शन सानिध्य मिला तो घर में कहाँ चिपकेगा। कई सदियों में चिपक चिपक के मरे, अब कहाँ चिपके। घर में मन न लगा, नर्मदा किनारे अनुष्ठान किया कि भाई तू कैसे मिलो। वहीं लालजी महाराज ने देखा कि किसी से मिलता जुलता नहीं, अकेला बैठा है, चने धोकर खा लेता है। वो बड़े प्रभावित हुए और फिर लालजी महाराज का वहीं से परिचय हुआ। फिर गुरुजी के पास पहुंचने का अवसर मिला और इंतजारी बेकरारी दरबदर तड़प बहुत थी। अच्छा भगवान सब भला, गुरु जी के संकेत और कृपा मिल गई। आसुद सुद 2 दिवस हो गया। फिर हम एक बार यात्रा की बस में अयोध्या गए और थोड़ी प्रसिद्धि हो चुकी थी, तो उसी महाराज के पास गए तो महाराज पहचान नहीं पाए कि ये बंदा पहले आया था, मत्था टेका था, नाक रगड़ा था। अब तो हम वो आंसू मल नहीं थे, आशारम होके गए थे, लीलाशाह जी के बेटे होके गए थे। तो महाराज ने मेरा बड़ी 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 क्या बताऊं सराहना की कि महाराज आप हमको थोड़ी मदद करो, आपके हाथ लंबे हैं, यहां हमको जरा अन्न क्षेत्र खुलवा दो। तो हमने देखा कि ये महाराज भूल गए कि कुछ समय पहले मैं इन्हीं से भगवत प्राप्ति की कृपा लेने आया था, अब ये ही कृपा चाहते हैं कि थोड़े ढींगले प्राप्त हो जाए ताकि वो चले। हाय राम, जो भगवत प्राप्त हो जाए तो ढींगले के लिए किसी को कहना पड़े? हाय राम, आप सूर्य के तरफ चल रहे हैं तो छाया के को कहना पड़ता है कि मेरे साथ आ। वो तो पाले हुए कुत्ते से भी ज्यादा लगी रहेगी आपके साथ। फिर आपकी रहमत हो जाए तो उसका उपयोग करो, उसकी थोड़ी सी हाजिरी स्वीकार कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, लुटा दो, दे दो, कोई बात नहीं। तो बैलगाड़ी में 500 साल घूमे, 100 साल की 80 48 साल की यात्रा करे, लेकिन जहाज में 48 घंटे भी बहुत हो जाते हैं विदेश पहुंचने के लिए। विदेश जाकर आ भी सकते हो, 48 घंटे जहाज की मुसाफरी। ऐसे ही तत्व ज्ञान है विहंग मार्ग। वो महाराज बुरे नहीं, अच्छे, हम उनको अभी भी महाराज श्री कहेंगे, सज्जन है, लेकिन वो मार्ग है पिपली का मार्ग, कईयों का योग मार्ग। अपने तीनों मार्ग साथ चलते हैं, कभी उड़ान भर दी, कभी छलांग मार दी, तो कभी कीड़ी के नाई चले, लेकिन चलना चालू रहे, कीड़ी के नाई भी उसी दिशा में चले, ऐसे आप कृपा करें। जंप मारकर बंदर की नाई भी उसी दिशा में कूद के मारे, और पक्षी की नाई भी उसी परमेश्वर की दिशा में आप चले। मेरा इतना विनंती है आप लोगों को, समाज को, सभी, आप जो भी करें ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर करें। आप रोएं तो भी ईश्वर के लिए, हंसे तो भी ईश्वर की स्मृति, लड़े झगड़े खूब लड़ो, मन लगा कर लड़ो, झगड़ा करने की हम मना नहीं करते, हम जानते कि कुछ न करे और तामसी होकर पड़ा रहे और भयभीत होकर सुकड़ा रहे, इससे झगड़ा करना भी अच्छा है। झगड़े करने के बाद पता चलेगा कि इसमें कोई सार नहीं है, हम समझौता और शांति अच्छी चीज है, लेकिन कायरता की शांति नहीं, शूरों की शांति चाहिए, लाचारी की शांति नहीं, बहादुरों की शांति चाहिए, अकर्मण्यता की शांति नहीं, कर्म योगियों की शांति चाहिए। चलो मरने दो, जो करेगा भरेगा, क्यों डरता है, कमजोर है। त्यक्त्वारदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठति परम तपः, या तो भय के कारण अपना कर्तव्य छोड़ता है, या तो कायरता के कारण कर्तव्य छोड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं छोड़ने दिया कर्तव्य, भागने की अपेक्षा लड़ो। जयराम जी की, हाँ, अपना बल भूता देखकर समझो कोई समाज में शोषण कर रहा है और आप उसे टक्कर लेंगे तो वो आपको दबोच देगा, आपकी बदली कर देगा, आपको जेल में डलवा देगा, तो फिर आप खुला मत लड़ो, धीरे धीरे वातावरण बनाओ। जयराम जी, समूह इकट्ठा करके उसकी हवा निकालो, शोषकों के प्रति विद्रोह नहीं होगा तब तक समाज शोषित रहेगा, हरामियों के प्रति सज्जन एकजुट नहीं होंगे तो हरामी हरामखोरी से बाज नहीं आएंगे। इसलिए अच्छे लोगों को एकजुट होकर बुराई से लोहा लेना चाहिए, बुराई सहते सहते दीनहीन होकर दब मरने की अपेक्षा युद्ध करते करते अमर हो जाना अच्छा है। उसका मतलब ये भी नहीं कि घर जाओ और भाभी डांट रही है, भाभी को सुना दो, ननंद है तो देरानी को सुना दो, अगर जेठानी है तो जेठानी को। वो घर में झगड़ाबाजी की बात नहीं कर रहा हूं। आप अशुद्ध से लोहा लो और शुद्ध के पक्ष में रहो, शुभ के पक्ष में रहो, अशुभ से बचो, और बाहर लड़ाई बाद में करना, पहले भीतर की लड़ाई शुरू करो। दूर के शत्रुओं से बाद में निपटना, पहले भीतर टांग खींचने वाले जो बैठे उनसे निपटो। अच्छे विचार और बुरे विचार पांडव और कौरव संस्कार आपके अंदर है कई जन्मों के, तो अच्छों को आप पोषण दो, और आप अच्छों से के पक्ष में नहीं रहते अच्छे कर्म अच्छे विचार में, और बुरे कर्म बुरे विचार आपको दबोच देते हैं, तो फिर आप मंत्र का सहयोग लो, प्रार्थना का सहयोग लो। हरि ओम 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 ओम। मैं बार बार काम विकार में नहीं गिरूंगा। आज सुबह मैं संकल्प करता हूं, कल रात को काम विकार में गिरा और देखो शरीर की बुरी हालत। अब मैं संकल्प करती हूँ, मैं संकल्प करता हूँ कि 4 हफ्ता तक पति पत्नी के शरीरों का शोषण नहीं, उनके आरोग्य और साधना का पोषण होगा। मैं फलाना आज से संकल्प करता हूँ 3 हफ्ता तक हम संयमी रहेंगे, 5 हफ्ता तक संयमी रहेंगे। यौवन सुरक्षा पुस्तक पढ़ो, जीवन रसायन पुस्तक पढ़ो, और इस प्रकार का 10 मिनट तक गुंजन करो, भगवान हमारे सहायक हो। बस आपका अर्जुन सक्षम हो जाएगा और कौरवों को रवाना होगा। ये कर्षति आकर्षति कृष्ण का संदेश, भारत ने अगर गीता और गौ का फायदा उठाया होता तो भारत की ये हालत नहीं होती। और देशों ने अगर गीता और गौ का फायदा उठाया होता तो और देशों की ये दुर्दशा नहीं होती। रात को चैन से नींद नहीं और दिन को पति पत्नी पर विश्वास नहीं, आरोग्य का कोई ठिकाना नहीं, देसी गाय का दूध नहीं, देसी गाय का घी नहीं, देसी गाय का झरण नहीं, देसी गाय का गोबर नहीं। वो बेचारे सूरी गाय और दूसरी वन प्राणी के मिश्रण से जर्सी गाय के दूध में ही फंस मरे हैं, उससे वो गुण का फायदा नहीं होता जो देसी गाय के घी दूध से फायदा होता है। अभी हमारे देश में देसी गाय है, उनका रक्षण पोषण ये समाज का ही रक्षण पोषण है, और उस देसी गाय के झरण से न जाने कितने हजार या कितने लाख लोगों का किडनी प्रॉब्लम और स्टमक प्रॉब्लम और बायपास सर्जरी प्रॉब्लम और फैट प्रॉब्लम, कितने प्रॉब्लम मिटे आप हम गिन नहीं सकते। ये सारा यश गौ माता को और गौ सेवकों को और भारतीय संस्कृति और इसके रचयिता ऋषि मुनियों को जाता है। ओम शांति। केवल काम विकार को रोकने का ये प्रयोग बताया है, लोभ हो मोह हो अहंकार हो जो भी दोष हो उस दोष को मन के सामने लाओ और अपना ओम 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 गुरु, ओम गुरु की गदा मारो और आज उस विकार में नहीं गिरेंगे। जरा जरा बात में चिढ़ जाते आज हम नहीं चिढ़ेंगे, जरा जरा बात में डर जाते आज हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हम भगवान के हो गए। अब हमारी प्राण शक्ति मन शक्ति मति शक्ति बढ़ेगी, हम इन असुरों से इन दुर्योधन की सेना से नहीं डरेंगे, हम अर्जुन की सेना में हैं, हमारे कृष्ण रक्षक हैं, हमारे सहायक प्रेरक परमात्मा है। हरि ओम ओम ओम। दुर्योधन की 11 अक्षौणी है, पांडवों की 7 है तो क्या हो गया, लेकिन भगवान उनके पक्ष में है, हम भगवान हमारे पक्ष में है। विरोधी और अशुभ भले ज्यादा है लेकिन भगवान हमारे पक्ष में, हम लोहा लेंगे। तो जो अपनी कमजोरी हो उस कमजोरियों से लोहा लेते जाओ, और कमजोरी का ज्यादा चिंतन न करो, भगवान का चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो। और कमजोरी हम में है ऐसा नहीं, कमजोरी मन में है, शरीर में है, बुद्धि में है, तो कमजोरी का पावर कम हो जाएगा और हम में भगवान है और भगवान में हम है, आपका पावर बढ़ जाएगा। हमारा गुरुजी से सीधा संबंध है, मंत्र दीक्षा लिए, भगवान से सीधा संबंध है क्योंकि उनका नाम है। विकारों से हमारा संबंध नहीं है, विकारों से तो मन का, शरीर का, वातावरण का है। हरि ओम 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 ओम, बहुत फायदा होगा। ये विहंग मार्ग है सोच विचार का, विहंग मार्ग है, उड़ान वाला है। नहीं तो गुस्सा आया एक दिन उपवास करो, गुस्सा आया एक दिन भोजन में जो नहीं अच्छा लगता वही डलवाओ, नमक की जगह पर शक्कर डलवाओ सब्जी में, नीम की चटनी खाओ। दूसरा मार्ग ये है, ये गांधीवादी मार्ग है, मन की कनपट्टी करना, ये भी अच्छा है। मुझे तो आप लोगों के भाग्य पर बड़ी प्रसन्नता हो, घर में बैठे रहते आते जाते संसार भी देख रहे और भगवान की ऊंचाइयों की यात्रा करने के रास्ते भी आप इतना प्रभात को पहुंच रहे, और जन्माष्टमी का दिवस तापी तट, तुम कितने भागशाली हो, कोई तराजू नहीं मिलती कि तोल दे। तुम कितना पुण्य अर्जित कर रहे हो, कोई तराजू का पाप भी नहीं तोल सकता। आपको कितने जन्मों के कुसंस्कार मिटाने का और कितनी जन्मों की यात्रा इसी जन्म में करने का कितना कुछ लाभ हो रहा है, इसकी कोई तराजू आज तक बनी नहीं होगी कि आपको इतना लाभ हो, इतना लाभ हो। मैं बोल नहीं सकता, थोड़ा बहुत अनुमान कर सकता हूँ। आप बहुत लाभ उठा रहे, आपको बहुत मिल रहा है भगवत, इतना 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 इतना। अब इतने ही हाथ लंबे, दूसरा बताऊं कहां से, दो दो किलोमीटर के हाथ होते ना तो भी कम है। कितना लाभ हो रहा है उसका संकेत हम बता नहीं सकते आपको। दो दो किलोमीटर का हाथ लंबे होते ना, आपको इतना लाभ हो रहा है तभी उसका वर्णन नहीं हो सकता। मैं सच कहता हूं, बहुत लाभ, बहुत बहुत बहुत। अब क्या बोलूं शब्दों में,